جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو یہ جو آیات ہم سورۃ الفرقان کی پڑھ رہے ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے. سورۃ الفرقان کی تفسیر پڑھنی ہم نے رمضان المبارک میں شروع کری تھی، اور اس کے باقی حصے جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مینلی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا کہ ان کو ہم نے فرقان دے کر کے اس دنیا میں نازل فرمایا، مبعوث فرمایا. اس دنیا میں نازل تو فرقان کو فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا فرقان دے کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو مخالفین تھے انہوں نے کیسے کیسے اعتراضات کیے، اور ان اعتراضات کا پھر اللہ تعالیٰ نے اجمالی اور تفصیلی جواب دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں. اب عباد الرحمن کی صفتیں پڑھ رہے ہیں، اور ان صفتوں میں سے آٹھویں اور نویں صفت وہ یہ تھی کہ یہ لوگ کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے سوائے حق کے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نے کسی کو قتل کرنے کا ایک جائز طریقہ یا جائز وجہ بتائی ہے، اسی وجہ سے ہی کسی کو قتل کرتے ہیں، ورنہ نہیں قتل کرتے. اور وہ پھر ہم نے بات کی ہے کہ جیسے ایون جانور کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اپنی غذا کے استعمال کے لیے یا کسی اور ایسی جائز ضرورت کے تحت. تو اسی طرح انسان کی جان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کسی انسان کو کوئی دوسرا انسان قتل نہیں کر سکتا سوائے جب شرعی طور پر یا تو جہاد کیا جاتا ہے اس وقت، یا پھر جب کوئی قصاص وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں جو قاضی وقت ہوتا ہے وہ اس کو قتل کرواتا ہے، یا یہ کہ زنا کا مرتکب ہوا ہو تو اگر شادی شدہ حالت میں زنا کا مرتکب ہوا ہے تو پھر رجم کی سزا دے کر کے اس کو قتل کیا جاتا ہے. تو یہ وہ جائز طریقے ہیں یا حق طریقے ہیں کہ جن پر کسی جان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور جان کو یعنی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی جان کو تلف کرے، ٹھیک ہے. تو اگر کسی سے ایسے بڑے بڑے جرم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرے، یا ہو چکے ہیں اس کی زندگی کے اندر، تو پھر وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے. اور توبہ کرنے سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں. اب یہاں پر توبہ کا ذکر ہے، تو یعنی اب جو آگے والی آیات تھیں اس کی وہ توبہ کے متعلق تھی نا، اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. تو یہ جو توبہ ہے، یہ توبہ پھر اب دو مختلف قسم کے لوگوں کی بیان فرمائی گئی ہے. پہلی توبہ جو بیان فرمائی گئی نا وہ ہے کافروں کی توبہ، یعنی جو شخص کافر تھا और साथ साथ जो है वो बहुत ही बड़े बड़े गुनाह के काम भी कर रहा था, यानी कुफर वाला गुनाह तो वो कर ही रहा था, लेकिन कुफर के गुनाह के अलावा भी और दूसरे गुनाह भी कर रहा था। ठीक है, तो उसकी तौबा का तरीका बताया कि वो आमना व अमला अमलन सालिहन, ठीक है, कि वो ईमान लेकर के आए, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत और नबुवत की गवाही दे, ठीक है, और उसके बाद फिर वो नेक अमाल करे तो उसकी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेंगे और उसके जो गुनाह हैं उनको नेकियों से तब्दील फरमा देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर है और रहीम है। ये आयत नंबर 69 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर उसके बाद आयत नंबर 70 के अंदर, सॉरी, ये आयत नंबर 70 में फरमाया। फिर आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला किसकी तौबा का जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई शख्स ईमान वाला है लेकिन वो गुनाह के काम कर रहा है तो उसकी तौबा का तरीका ये होगा कि वो अल्लाह ताला से तौबा करे, अपने गुनाहों के ऊपर नादिम और शर्मिंदा हो। ठीक है, नबी रसूलुल्लाह ने फरमाया अन्नदमु तौबतुन, कि गुनाह के ऊपर नदामत हो, शर्मिंदगी हो तो फिर तौबा होती है। ठीक है, बगैर नदामत निदामत के तौबा नहीं होती। ठीक है, यानी ऐसा अगर कोई शख्स करे ना कि वो गुनाह का काम करता था और उसके बाद जो है ना वो गुनाह करना छोड़ दे, ठीक है, लेकिन उस गुनाह को बुरा ना समझे और जो उसने किए हैं उन किए हुए गुनाहों के ऊपर उसको कोई पशेमानी ना हो, कोई नदामत ना हो, कोई अफसोस ना हो, ठीक है, बल्कि उस अफसोस और नदामत पशेमानी के बगैर ही वो छोड़ दे। ठीक है, क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस तरह हो सकता है कि एक शख्स जो है वो लोगों के ऊपर जुल्म किया करता था, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा ताकतवर था और बड़ा जो है ना मजबूत बदन का हामिल था, तो इस वजह से लोगों को मारा पीटा करता था। अब वो पड़ गया बीमार और बीमार होने की वजह से वो कमजोर हो गया, तो अब वो मजबूत है ही नहीं कि लोगों को मारे, तो जाहिर है अब उसने लोगों को मारना छोड़ दिया। ठीक है, तो लोगों को मारना छोड़ देना क्या ये तौबा है उसकी? नहीं, ये उसकी तौबा नहीं है, इसलिए कि उसने अपनी बीमारी की वजह से लोगों को मारना छोड़ा है, वो अपने पिछले किए के ऊपर नादिम और शर्मिंदा नहीं है। तो ऐसा शख्स अगर दोबारा से सेहतमंद हो जाएगा ना तो ये फिर से लोगों को मारना शुरू कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जैसे एक शख्स जो है वो गंदी चीजें देखा करता था, बदनजरी किया करता था, ठीक है, फिर उसकी आंख खराब हो गई, तो आंखें खराब होने की वजह से अंधा हो गया ये, अब ये बदनजरी कर ही नहीं सकता तो इसने बदनजरी करना छोड़ दी, लेकिन क्या ये उसकी तौबा है? नहीं, ये उसकी तौबा नहीं है, क्योंकि इसने ने अल्लाह ताला के खौफ की वजह से और अपने गुनाह पर नदामत और शर्मिंदगी की वजह से बदनजरी नहीं छोड़ी है, बल्कि अंधा हो जाने की वजह से बदनजरी छोड़ी है। उसी तरह बहुत सारे लोग जवानी के अंदर गुनाह करते हैं लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े होने के बाद वो गुनाह कर ही नहीं सकते, उनके रास्ते बंद हो गए गुनाह करने के, तो बूढ़े हो जाने की वजह से तौबा नहीं हो जाती, बल्कि तौबा जो है वो नदामत और शर्मिंदगी की वजह से होती है। अगर वो करेगा तो फिर तौबा होगी वरना नहीं होगी। तो ये जो मन तावा है ना, इसके अंदर ये सारी तफसीलात हैं। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनने के बाद जो है वो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा जुबान से कह दिया और बस, दिल के अंदर कोई एहसास ही नहीं है कि मैंने क्या किया। भाई वो मौलाना साहब पढ़वा रहे थे अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, तो मैंने भी पढ़ लिया। ठीक है, ये तौबा नहीं होती। ठीक है, तो तौबा का मतलब तो होता है कि दिल के अंदर सख्त शर्मिंदगी और नदामत हो अपने गुनाह के बारे में और उससे फिर उसको छोड़ देने का, यानी छोड़ देने का इरादा भी हो कि नहीं मैं अब ये नहीं करूंगा। ठीक है, अब हो चुकी मुझसे जो गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, उसके ऊपर आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, ये भी तौबा का एक रुकन है, एक जुज है तौबा का, कि आइंदा ना करने का इरादा करना दिल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद अमिला सालेहन, अमिला सालेहन का मतलब क्या होता है, उसको हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने ये आगे एक्सप्लेन किया, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं पेज नंबर 506 पर से। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर इस पर कोई ऐसा पॉइंट आया तो वो डिस्कस करेंगे। कि फरमाते हैं पेज नंबर 506 के ऊपर दूसरे तीसरे पैराग्राफ गालबन बनेगा, ये कहते हैं कि वमन ताबा व अमिला सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। ठीक है, कि کہ جس نے توبہ کری اور نیک اعمال کیے پس اس کے لیے یتوبو الی اللہ لوٹنا ہے اللہ کی طرف متابن ایک بہترین لوٹنے کی جگہ. متابن کا مطلب ایک لوٹنے کی جگہ, جیسے پچھلی کلاس میں بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک جگہ ہے, ایک مقام ہے ہر بندے کے لیے, ایک پلاٹ ہے ہر بندے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پلاٹ ہر بندے کے نام تو ہے لیکن یہ اس کو الاٹمنٹ پیپرز کا ملیں گے, ہوتا ہے نا بھائی کہ جی پلاٹ آپ کے نام ہو گیا لیکن آپ کو الاٹمنٹ کے پیپرز نہیں ملے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک آپ کو قبضہ نہیں ملا اس پلاٹ کا, ہے نا جی. بہت سارے آپ میں سے ہوں گے جنہوں نے کہ جی وہ کسی رہائشی اسکیم کے اندر جو ہے نا وہ پلاٹ خریدا ہوگا, قسطوں کے اوپر خریدا ہوگا, تو وہ پلاٹ کا جو ہے نا وہ نام تو مل جاتا ہے نا اکثر. نام تو ظاہر ہے آپ نے جب پیمنٹ شروع کر دی, آپ نے اپنے پیپرز وغیرہ سائن کر دیے تو نام تو آپ کا لگ گیا اس پلاٹ کے اوپر, لیکن کیا قبضہ بھی ملا ہے آپ کو؟ قبضہ تو اس وقت ملے گا نا جبکہ انہوں نے ساری کنسٹرکشن وہاں مکمل کر لی ہوگی, وہاں بجلی بھی آ گئی ہوگی, پانی بھی آ گیا ہوگا اور باقی سارے کام ہو گئے ہوں گے, تب آپ کو قبضہ ملے گا, ورنہ اس سے پہلے قبضہ نہیں ملے گا. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پلاٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ہر مومن کے لیے جنت کے اندر, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پاس کا مطلب عرش کے اوپر پلاٹ نہیں ہے یہ, بلکہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پلاٹ اسائن کیا ہوا ہے ہر انسان کے لیے, مومن کے لیے نہیں, ہر انسان کے لیے الاٹ کیا ہوا ہے, ہر انسان کے لیے الاٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس پلاٹ کا قبضہ کس کو ملتا ہے؟ جو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, پلٹتا ہے, اس کو قبضہ ملتا ہے اس پلاٹ کا, اور جو نہیں کرتا اس کو اس پلاٹ کا قبضہ نہیں ملتا, ٹھیک ہے, بلکہ کسی اور کو اس کا قبضہ دے دیا جاتا ہے, اس کو نہیں ملتا اس کا قبضہ, ٹھیک ہے. بلکہ اس کو کدھر ملے گا پھر قبضہ, کیونکہ جنت کی پلاٹ کا قبضہ تو اس نے حاصل کرنے کے لیے توبہ کری نہیں, تو اب اس کو کہاں پہ قبضہ ملے گا؟ اس کو جہنم کے اندر, جو پلاٹ تھا نا اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر بھی ایک پلاٹ بنایا ہوا ہے ہر انسان کے لیے, ہر انسان کے لیے, ٹھیک ہے. تو جو ایمان والا ہوتا ہے اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا, تو اس کو تو جنت والا پلاٹ کا قبضہ مل جاتا ہے, اور جو ایسا نہیں کرتا اس کو جہنم والے پلاٹ کا قبضہ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جس کو جنت کا قبضہ نہیں ملا پلاٹ کا, تو وہ قبضہ جو ہے وہ کسی دوسرے کو دے دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جہنم میں جو نہیں گیا اپنے توبہ اور ایمان کی وجہ سے, تو اس کا جو جہنم والا پلاٹ تھا نا وہ پھر ان لوگوں کو الاٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ اپنے کفر اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں قبضہ حاصل کرتے ہیں, جہنم کی پلاٹ کا قبضہ حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا متابن کے بارے میں چند باتیں. اب لکھتے یہ ہیں کہ بظاہر یہ اسی مضمون کا تکرار ہے, ریپیٹیشن ہے نا, یہ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ بھی پچھلی آیت کے اندر بھی تو یہی بات کری تھی اللہ تعالیٰ نے, ومن تابا, ہے نا. تو کہتے ہیں کہ بظاہر یہ اسی مضمون کا تکرار ہے جو اس سے پہلے آیت میں آیا ہے, اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. اور قرطبی نے, جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں, انہوں نے قفال سے یہ نقل کیا ہے. قفال جو ہیں وہ ان کے استادوں میں سے ہوں گے, تو قفال نے سے یہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ توبہ پہلی توبہ سے مختلف اور الگ ہے, کیونکہ پہلا معاملہ کفار و مشرکین کا تھا جو قتل و زنا میں بھی مبتلا ہوئے تھے پھر ایمان لے آئے. یعنی بہت سارے کفار اور مشرکین ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی ساری زندگی کفر کے ساتھ تو گزارتے ہیں لیکن کسی کو قتل نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, کسی کے ساتھ زنا نہیں کرتے, بس شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر کافر جو ہے وہ قاتل ہونا ضروری ہے, ہر کافر جو ہے وہ زانی ہونا ضروری ہے, نہیں, بلکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کرتے یہ سارے گناہ. تو یہاں پر اس کافر کا ذکر ہے جو کہ قتل و زنا میں بھی مبتلا ہوئے تھے پھر ایمان لے آئے, تو ان کی سیئات حسنات سے بدل دی گئیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو ہم کیسے بدل دی گئیں, اس کی دو ایکسپلینیشنز اوپر کے پیراگرافز کے اندر گزر چکی ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تفسیر یہ تھی کہ جی وہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور پچھلے زمانے میں جو ان کا نام ہے اعمال سیئات اور معاصی سے ہی لبریز تھا, اب ایمان لانے سے وہ تو سب معاف ہو گئے, آگے ان معاصی اور سیئات کی جگہ ایمان اور اس کے بعد کے اعمال صالحہ نے لے لی, تو اس طرح سے ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے ان کے نام اعمال کے اندر, ٹھیک ہے. کہ پرانے والے معاف ہو گئے और अब उन्होंने नेक आमाल करने शुरू कर दिए, तो वो नेक आमाल नामे आमाल को भरना शुरू शुरू हो गए। ठीक है, ये एक तफसीर थी। और दूसरी तफसीर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की, वो क्या थी कि जितने गुनाह उन्होंने जमाने कुफ्र जाहिलियत में किए थे, ईमान लाने के बाद उन सब गुनाहों के बदले के बजाय नेकियां लिख दी जाएंगी, यानी गुनाहों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा नेकियों के अंदर। ठीक है ना, ये कैसे होगा, वो भी वजह उन्होंने लिखी थी कि ये पिछले वाले पैराग्राफ को बस में पढ़ रहा हूँ कि वजह इसकी ये है कि ईमान लाने के बाद जब कभी इन लोगों को अपने पिछले गुनाह याद आएंगे तो उन पर नादिम होंगे और तौबा की तजदीद करेंगे। ठीक है, यानी अगरचे कि वो तौबा कर भी चुके होंगे लेकिन फिर भी ना नदामत और शर्मिंदगी उनको अभी भी होती रहेगी पिछले गुनाहों के ऊपर, तो वो हर मरतबा तौबा की तजदीद करेंगे। तो ये जो तौबा की तजदीद होगी उससे उनके इस अमल से वो गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह ताला को उनका ये तौबा की तजदीद करना इतना पसंद आएगा कि उनके गुनाहों को नेकियों में अल्लाह ताला तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो ये तो काफिरों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने की सूरतें लिखी हुई हैं, दो सूरतें कि या तो उस तरीके से नेकियों में तब्दील हो जाएंगे या इस तरीके से नेकियों में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन यही चीज जो है ना मुसलमानों के लिए भी है कि जब मुसलमान भी तौबा करता है ना, ठीक है, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देते हैं, लेकिन फिर वो अगर कंटिन्यूसली तौबा करता रहता है, पिछले गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होता रहता है, अल्लाह ताला के सामने जो है वो आंसू बहाता रहता है, ठीक है, तो इस आंसू बहाने की वजह से, इस पिछले गुनाहों को याद करके रोने की वजह से अल्लाह ताला उससे इतना ज्यादा राजी होते हैं, इतने ज्यादा खुश होते हैं कि जो पिछले माफ किए हुए गुनाह थे उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, क्योंकि ये लोग अपने तौबा की तजदीद करते रहते हैं, तौबा की तजदीद करते रहते हैं। ठीक है, अब देखें ये कैसे होता है, एक मुसलमान की जिंदगी में ये तौबा की तजदीद की क्या शक्ल बनती है, कैसे ये चीज होती है। वो ऐसे होती है, एक खास यानी एक शक्ल उसकी ये होती है कि ये जो है ना फिर मशायख के सोहबत में आता जाता रहता है। ये जो तौबा करने वाला इंसान है ये मशायख की सोहबत में आता जाता रहता है, तो मशायख के यहाँ जो बात होती है ना वो बहुत ज्यादा तौबा के मुताल्लिक होती है, तौबा के बारे में वो बहुत ज्यादा बात करते हैं। ठीक है ना, तो उनके बयानात के अंदर वो तौबा के मुतालिक सुनता है, तौबा की अहमियत सुनता है, अल्लाह ताला की रहमत के बारे में सुनता है, राइट, और गुनाहों के जो जो अजाब होते हैं गुनाहों की वजह से उनके बारे में सुनता है, तो इसको दिल ही दिल के अंदर ना अपने पिछले गुनाह याद आते हैं और ये उनके ऊपर और नादिम होता है और शर्मिंदा होता है। ठीक है ना, तो इसको बयान के दौरान रोना आता है अपने उन गुनाहों के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद फिर जब ये मशायख जो है वो अपने बयान के बाद दुआएं करते हैं तो दुआओं के अंदर तो ये और भी ज्यादा होता है, और भी ज्यादा अपने गुनाहों के ऊपर। देखिए, आपने कभी नोट कभी सोचा नहीं कि जी ये जो अल्लाह वाले बयान करते हैं उसके बाद जो गुनाह उसके बाद जो दुआएं करते हैं तो उन दुआओं के अंदर बार बार अल्लाह ताला से माफी, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। भाई क्या कितनी दफा मांगोगे यार, कितनी दफा अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांगोगे, कल भी मांगी थी, परसों भी मांगी थी, पिछले हफ्ते की मजलिस में भी मांगी थी, उससे पिछले हफ्ते की मजलिस में भी मांगी थी, हर मरतबा वही बातें करते हैं, हर मरतबा वही अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। क्यों करते हैं, टाइम जाया करने के लिए, अपना भी टाइम जाया करते हैं, आपका भी टाइम जाया करते हैं, है? नहीं, ये टाइम जाया नहीं करना होता, ये वक्त का जया नहीं होता, ये फालतू में नहीं होता, बल्कि इस तरीके से ना अल्लाह ताला के सामने अपनी आजजी इनकिसारी और अपनी खशियत को और ज्यादा जाहिर करना होता है, बार बार जाहिर करना होता है। ठीक है, और इससे फायदा होता है, फायदा क्या होता है कि अल्लाह ताला इससे और ज्यादा खुश होते हैं और पिछले गुनाहों को नेकियों में तब्दील करते रहते हैं, तब्दील करते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये हर मरतबा की जो दुआ होती है ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हमने अपनी जानों के ऊपर ज़ुल्म किया, ये जो है ना ये खामखा की तकरार नहीं होती, ये खामखा की जो है ना वो यानी लफाजी नहीं होती है ये, बल्कि इसका ये इतना बड़ा फायदा हो रहा होता है। ठीक है, तो लोगों को गुनाहों को याद, यानी लोगों के गुनाह उनको याद दिलाना, उनको समझाना कि भाई ये गुनाह जो है ना वो जिंदगी के अंदर हमने किए हैं या करते अभी तक करते आ रहे हैं, तो इसका जो है ना वो फायदा होता है और बहुत बड़ा फायदा होता है। इससे बड़ा और क्या फायदा कि जन्नत के अंदर आपको ऊंचे से ऊंचा मुकाम मिलता चला जा रहा है, ठीक है ना भाई। जितनी नेकियां आपके नामे अमाल के अंदर लिखी जाएंगी तो जन्नत के अंदर जो जो आपका मुकाम है, जो मर्तबा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है किसी इंसान को? हो ही नहीं सकता। कोई फायदा इससे बड़ा हो ही नहीं सकता कि जन्नत के अंदर आपको मैंने बुलंद मुकामात मिल रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर किसी को कोई अगर सवाल हो या एतराज हो तो प्लीज कर लिया करें क्लास के अंदर ना। एक मिनट जरा ठहरिएगा, आपकी दूसरी टीचर का एक मैसेज आया हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, तो शायद वो क्लास के बारे में कुछ कह रही हैं, देखें जरा। वो थोड़ी सी देर से स्टार्ट होगी तो हम थोड़ी तफसीर और पढ़ लेते हैं जब तक वो क्लास शुरू करने के लिए आएंगी। अच्छा, तो फरमाते हैं कि अच्छा अब मैं मजीद पढ़ रहा हूँ कि यहाँ मुसलमान गुनाहगारों की तौबा का जिक्र है, यानी ये जो आयत नंबर 71 है। इसीलिए पहली तौबा के साथ वह आमना, यानी उसके ईमान लाने का जिक्र था, क्योंकि वो काफिर था पहले, अब ईमान ले आया। इस दूसरी तौबा में, ठीक है, यानी आयत नंबर 71 वाली जो तौबा है उसमें वो मजकूर नहीं, ये ईमान लाना मजकूर नहीं है, जिससे मालूम होता है कि ये तौबा उन लोगों की जिक्र की गई है जो पहले से मोमिन ही थे मगर गफलत से कत्लो जिना में मुबतला हो गए, ठीक है। गफलत से कत्लो गुनाह में मुबतला हो गए। गफलत से का मतलब क्या है कि जब कोई इंसान अल्लाह ताला से गाफिल नहीं होता है ना, ठीक है, तो वो गुनाह कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला, अच्छा, गाफिल का ऑपोजिट क्या है? जाकिर, ठीक है ना। गाफिल का ऑपोजिट होता है जाकिर। जाकिर का मतलब है कि अल्लाह ताला याद है उसको, अल्लाह ताला की तरफ उसका ध्यान बना हुआ है, तवज्जो बनी हुई है। जाकिर इंसान गुनाह नहीं कर सकता, या जो इंसान जिक्र की हालत में हो वो गुनाह यानी अल्लाह की नाफरमानी किसी भी सूरत की नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि इंसान जो है ना वो यानी गाफिल हो, अल्लाह ताला का जिक्र जो है ना वो छोड़ दे, ठीक है, या तो परमानेंटली छोड़ दे तो फिर वो मुस्तकिल गुनाह में मुबतला हो जाएगा, या अगर टेम्पोरारिली छोड़ दे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला के जिक्र को छोड़ देना, तो वो भी गुनाह के अंदर मुबतला हो जाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला के जिक्र का मतलब क्या है? तस्बीह पढ़ना छोड़ दे, तो भाई क्या हम 24 घंटा तस्बीह पढ़ सकते हैं? तो अगर हम 24 घंटा तस्बीह नहीं पढ़ सकते तो इसका मतलब ये है कि जिस वक्त हम तस्बीह नहीं पढ़ रहे उस वक्त हम गुनाह कर रहे हैं, या उस वक्त हम गुनाह में मुबतला हो जाएंगे? नहीं, बल्कि जिक्र का मतलब जो है वो तस्बीह पढ़ना नहीं होता, ठीक है ना। तस्बीह पढ़ना जिक्र का मतलब नहीं होता, जिक्र का मतलब ये होता है कि इंसान का दिल अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो, ठीक है ना। चाहे वो हाथों में तस्बीह फेर रहा हो, जुबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हो, अगर उसका दिल मुतवज्जे है अल्लाह की तरफ तो वो जाकिर है, लेकिन अगर वो जुबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है लेकिन उसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं है तो वो जाकिर नहीं है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक नौजवान साहब जो है वो शॉपिंग मॉल के अंदर जा रहे हैं और उनके हाथ में तस्बीह भी है और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करे चले जा रहे हैं, लेकिन मॉल के अंदर जो खवातीन इधर से उधर गर्दिश कर रही हैं वो उनको भी देखे चले जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा ऐन मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि हाथ में तस्बीह हो, जुबान पर सुभान अल्लाह हो और नजरें जो हैं वो गैर महरम को शहवत के साथ देख रही हो, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत बहुत आम है ये इस किस्म की हरकतें, बल्कि पहले होती थी, अब तो इस किस्म का लोग तकल्लुफ भी नहीं करते कि तस्बीह पढ़ते हुए लोगों को करने, अब तो वो तस्बीह वस्बी पढ़ने का फैशन ही खत्म हो गया ना। पहले तो फैशन होता था तो उस वक्त ये बात कही जाती थी कि भाई हाथ में तस्बीह और अंदर से मियाँ कस्बी, ऊपर से ला इला अंदर से काली बला, तो ये पुराने जमाने में होता था, ऊपर से ला इला अंदर से काली बला। आजकल तो ऊपर से ला इला भी खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब तो ऊपर और अंदर, अंदर और बाहर दोनों ही, ठीक है, दोनों ही गुनाह चल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन है। तो जाकिर होने का मतलब यह है कि दिल की तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ बनी हुई हो। दिल की तवज्जो अल्लाह ताला से जब हट जाती है ना, तो उसको कहते हैं गाफिल हो जाना, ठीक है ना। और जब गाफिल हो जाता है बंदा, तो उस वक्त फिर वो शैतान के के पंजे में आ जाता है, ठीक है। हत्ता के हदीस मुबारक से तो ये भी पता लगता है कि एक जो परिंदा होता है ना, वो परिंदा उस वक्त तक शिकारी के जाल में नहीं फंस सकता, शिकारी के जाल में एक परिंदा उस वक्त तक नहीं फंस सकता जब तक वो अल्लाह ताला का जिक्र करता रहता है। तो परिंदा भी अगर अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है ना, तो फौरन जो शिकारी होता है उसको पकड़ लेता है, ठीक है ना। यानी वो ऐसा गफलत की वजह से उसको शिकार करने वाला उसको पकड़ लेता है। अगर ये गाफिल ना होता तो शिकार करने वाला इसको नहीं पकड़ सकता था, ठीक है। अब वो शिकार करने वाला जो है कोई इंसान भी हो सकता है, और शिकार करने वाला कोई दूसरा जानवर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जो शिकारी होता है वो कोई दूसरा जानवर होता है, या कोई दूसरा इंसान, या कोई इंसान होता है जो इसको पकड़ लेता है। और हमारे लिए शिकारी कौन होता है? हमारे लिए शिकारी जो है वो शैतान है, ठीक है। तो ये शैतान एक ऐसा शिकारी है जो कि हमारे मुस्तकिल हमारी ताक में रहता है, ठीक है ना। यानी ऐसा कोई लम्हा हमारी जिंदगी में नहीं आता, ऐसा कोई लम्हा, इस बात को जरा गौर से सुन लीजिए, ऐसा कोई लम्हा हमारी जिंदगी में नहीं आता कि जिसमें शैतान हमारी ताक में ना हो। ताक में, समझते हैं सब लोग ताक में होने का मतलब? ये एक उर्दू का मुहावरा है, हो सकता है किसी को इतनी उर्दू ना आती हो कि ताक में होने का मतलब क्या होता है। पिछले दिनों वो कल परसों मर्दों में क्लास हो रही थी, तो उसमें साजिद ने जरा इसी तरह का एक मुहावरा इस्तेमाल किया कि बीवी को राम करना, ठीक है ना। वो सूरह निसा की तफसीर में चल रही थी बात, बीवी को राम करना, ठीक है। तो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जी हर कोई ना मेरी बात को समझ रहा है कि बीवी को राम करना, किसी दूसरे शख्स को राम करना का मतलब क्या है। लेकिन जाहिर है हर एक को इतनी उर्दू नहीं आती है। तो एक साहब ने फिर आखिर में पूछा कि राम करने का मतलब कि उनको यानी खुश करना, ये मतलब होता है राम करने का। मैंने कहा वाकई आपको ये इसका अंदाजा नहीं था कि राम करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मुहावरात हम कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बंदे को मुहावरे का मतलब भी समझ में आता हो। इस वजह से आपसे पूछ रहे हैं कि ताक में होने का मतलब पता है ना, ठीक है। तो शैतान हर वक्त ताक में है, हर इंसान के लिए, ठीक है। सिर्फ नबियों के, नबी जो होते हैं उनके उनका जो शैतान होता है ना वो मुसलमान हो जाता है, लेकिन ठीक है ना, अगर आप जाकिर होंगे। लेकिन अगर आप जाकिर नहीं होंगे ना, तो फिर वो खाली ताक में नहीं रहेगा, बल्कि ताक में रहने के साथ साथ वो आपके ऊपर मुस्तकिल अटैक भी करता रहेगा, ठीक है। तो उसके अटैक से बचने के लिए कल्बी जिक्र ये हमारे लिए लाजमी है, शैतान के अटैक से बचने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब शैतान अटैक करता है ना, तो फिर वो नुकसान पहुंचाए बगैर वो टलता नहीं है फिर वो, ठीक है ना। कि बस अटैक किया भाई, अटैक करने के बाद जैसे कि वो खेल के अंदर नहीं, एक दोस्त किसी दूसरे के साथ खेल रहा है, कुश्ती का गेम खेल रहा है, कोई रेसलिंग खेल रहे हैं, तो उसमें जो है ना वो एक रेसलर दूसरे रेसलर को अटैक करता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये तो एक स्पोर्ट है, ये तो एक गेम है ना। शैतान का मामला ऐसा नहीं है। शैतान जब भी अटैक करता है ना, तो फिर वो हमें एक जर्ब लगा करके फिर पलटता है, ठीक है, और फिर दूसरी जर्ब लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये शैतान के साथ हमारा मामला है। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, या एडमिन साहब अगर आप उनको आप म्यूट कर सकें, ठीक है। तो गाफिल और जाकिर की ये तफसील है कि जिक्र की हालत में शैतान अटैक नहीं कर सकता, اور غفلت کی حالت میں شیطان اٹیک کرتا ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ کہاں پڑھا تھا, ہاں, غفلت سے قتل و زنا میں مبتلا ہو گئے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگ اگر توبہ کر لینے کے بعد صرف زبانی توبہ پر اکتفا نہ کریں بلکہ آئندہ کے لیے اپنے عمل کو بھی صالح اور درست بنا لیں تو ان کا توبہ کرنا صحیح اور درست سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے, آئندہ کے لیے اپنے عمل کو بھی صالح اور درست بنا دیں تو ان کا توبہ کرنا صحیح اور درست سمجھا جائے گا. اسی لیے بطور شرط کے توبہ کر لینے کے ابتدائی حال ذکر کرنے کے بعد اس کی جزا میں پھر یتوبو کا ذکر کرنا صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس جملے کے دو حصے ہیں, پہلا حصہ جو ہے وہ شرط کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ جزا کہلاتا ہے. پہلا حصہ کنڈیشن کہلاتا ہے, شرط کو انگریزی میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا, کنڈیشن. ٹھیک ہے, اور دوسرا حصہ جزا, اس کو انگریزی میں کہیں گے آؤٹ کم, آؤٹ کم آف دی کنڈیشن. تو اف دا کنڈیشن از میٹ, اگر وہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہے تو پھر آپ کو آؤٹ کم ملے گا, اگر کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو آؤٹ کم نہیں ملے گا. اس کو انگریزی میں کنڈیشنل سینٹینس بھی کہتے ہیں. تو یہ جو دو سینٹنسز ہیں نا, من تابا, دونوں سینٹنسز من سے شروع ہوئے, تو یہ جو من ہے نا یہ کہلاتا ہے من شرطیا, شرط والا من, کنڈیشن والا من. ٹھیک ہے نا, تو اس من شرطیا کی وجہ سے یہ سینٹنسز کنڈیشنل سینٹنسز بن جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ من کے بعد جو شرط ذکر کی جا رہی ہے اگر وہ شرط پوری ہوگی تو پھر اس کا آؤٹ کم بھی ملے گا, یعنی جزا بھی ملے گی, اور اگر شرط پوری نہیں ہو رہی تو پھر جزا نہیں ملے گی. یہ کنڈیشنل سینٹنس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ لکھ لیں اس کو بطور نوٹس کے, جن کو یہ بات پہلے پتا نہیں تھی. ٹھیک ہے, لکھ لیا کریں بھائی, کنڈیشنل سینٹنسز ہوتے ہیں, جملہ شرطیہ کہا جاتا ہے ان کو عربی گرامر کے اندر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھے نا, یہ یعنی من تابا بطور شرط کے توبہ کر لینے کے ابتدائی حال ذکر کرنے کے بعد اس کی جزا میں پھر یتوبو کا ذکر کرنا صحیح ہو گیا, کیونکہ شرط میں جس توبہ کا ذکر ہے وہ صرف زبانی توبہ ہے اور جزا میں جس توبہ کا ذکر ہے وہ عمل صالح پر مرتب ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ توبہ کا جو لفظ ہے وہ شرط میں بھی استعمال ہو رہا ہے من تابا, اور اسی توبہ کے لفظ کا ذکر جو ہے نا وہ جزا کے اندر بھی ہو رہا ہے. یتوبو الی اللہ, وہ پلٹتا ہے. یتوبو کا مطلب یہاں پر کیا ہوا کہ وہ پلٹتا ہے اللہ تعالی کی طرف. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیوں دوبارہ سے ذکر کیا کہ وہ پلٹتا ہے اللہ تعالی کی طرف, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اب اس نے جو توبہ کری ہے نا, تو اب اس توبہ کے اوپر وہ قائم بھی ہے. ٹھیک ہے, اس توبہ کے اوپر وہ قائم بھی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے, یہ ویسے تو مطلب اتنا آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایک ایگزامپل لیتے ہیں, ایک مثال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مثال کیا ہے کہ گاڑی کی مثال. ٹھیک ہے, آپ سڑک کے اوپر گاڑی چلا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, یا گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئے ڈرائیور صاحب یا آپ کے ہسبینڈ چلا رہے ہیں یا کوئی اور. ٹھیک ہے, گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, گاڑی جو ہے وہ جا رہی ہے آپ کے شہر میں, دیٹ سے آپ جو ہے نا وہ دارالحکومت میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی یعنی کیپٹل سٹی میں رہتے ہیں. کیپٹل سٹی جو ہوتا ہے اس کے اندر پریزیڈنٹ صاحب کا بھی گھر ہوتا ہے, یا اگر سعودی عرب میں رہتے ہیں تو سعودی عرب کے اندر جو کیپٹل سٹی ہوتا ہے تو چونکہ یہاں پہ بادشاہت ہے تو بادشاہ سلامت کا محل بھی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے نا وہ کیپٹل سٹی میں رہتے ہیں جس کے اندر بادشاہ سلامت کا محل بھی ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ جو ہے نا بادشاہ سلامت کا محل دیکھنے کے لیے گئے. ٹھیک ہے, اور محل دیکھنے کے بعد جو ہے نا आपने कहा यार बस बहुत हो गया, बहुत देख लिया मैंने बादशाह सलामत का महल, अब गाड़ी को मोड़ो और यहाँ से कहीं और चलते हैं। तो आपने अपनी गाड़ी को मोड़ा और आप जो है वो महल से मुखालिफ सिमत में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना। बादशाह के महल को आपने एक दफा देख लिया और उसके बाद फिर आपने अपनी गाड़ी में वापसी का सफर शुरू कर दिया। तो अब जो वापसी का सफर होगा ये किधर जा रहा होगा, ये बादशाह सलामत के महल से दूर जा रहा होगा, है ना। अब आपकी गाड़ी दूर जा रही है, ठीक है। तो दूर जाते जाते एकदम से आपने फैसला किया कि मैं क्यों बादशाह के महल से दूर जा रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे तो बादशाह के महल के करीब रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बादशाह का महल जितनी अच्छी जगह है तो वो ऐसी अच्छी जगह तो और कोई हो नहीं सकती मुल्क के अंदर, तो मैं क्यों क्यों जा रहा हूँ बादशाह के महल से दूर। तो आपने ये फैसला किया कि अच्छा मैं जो हूं ना मैं यू टर्न कर लेती हूँ, अपनी गाड़ी का यू टर्न कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप जिस सड़क पे जा रही थी वहां पर आपको एक यू टर्न नजर आया, यू टर्न समझते हैं ना सब, सड़क के ऊपर जो वो बीच में फुटपाथ होता है उस, ठीक है, बीच में जो एक वो पार्टीशन होती है उस पार्टीशन को उन्होंने थोड़ा सा तोड़ा हुआ होता है ताकि गाड़ियां जो वापस पलटना चाहें वो वहां से यू टर्न कर सकें, ठीक है। तो आपको जब ये एहसास हुआ ना कि नहीं मुझे बादशाह के महल से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बादशाह का महल ही तो वो जगह है कि जहां पर मुझे रहना चाहिए हर वक्त, ठीक है, तो आपने जो है ना वो गाड़ी को थोड़ा सा स्लो किया और स्लो करके आपने ये यू टर्न ले लिया, ठीक। किसी को अगर बात समझ में ना आ रही हो तो प्लीज बिला तकल्लुफ पूछ लें। अच्छा कोई मुंह से लिख रहा है यहाँ पे, सॉरी, अस्तगफुरुल्लाह। एक मिनट ठहर, तो आपने जो है ना अपनी गाड़ी को थोड़ा सा स्लो किया और आपने यू टर्न ले लिया, ठीक है। लेकिन यू टर्न लेने के बाद आपने गाड़ी को बंद कर दिया, ठीक है, स्विच ऑफ कर दिया गाड़ी का, ठीक है, वो जो इग्निशन के अंदर की लगाई हुई होती है ना चाबी, उस चाबी को आपने घुमा करके बंद कर दिया गाड़ी को, तो आपने यू टर्न तो ले लिया, ठीक है, यू टर्न तो आपने ले लिया। यू टर्न लेने से क्या हुआ कि आपने अपने जो गाड़ी का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो है वो बादशाह के महल की तरफ कर दिया, ठीक है, बादशाह के महल की तरफ कर दिया। लेकिन क्या अब आपका सफर भी शुरू हो गया है बादशाह के महल की तरफ, क्या आपका सफर शुरू हुआ, सफर तो शुरू नहीं हुआ ना, आप बादशाह की तरफ महल की तरफ बढ़ना तो शुरू नहीं हुए ना, आपने यू टर्न कर लिया, यू टर्न करने के बाद आप बैठ गए हैं वहीं पर आप गाड़ी बंद करके बैठ गए। अब आपके सामने बादशाह का महल है लेकिन आप बादशाह के महल के करीब नहीं हो रहे, ठीक है, बादशाह के महल के करीब तो नहीं हो रहे ना, क्यों करीब नहीं हो रहे, क्योंकि आपने गाड़ी को बंद कर दिया है। अब आपने जो है ना वो गाड़ी को कि जो है ना जो एक्सीलेटर होता है ना गाड़ी का जिसमें स्पीड बढ़ाने के लिए पैर पैर से लोग दबाते हैं उसको, ड्राइवर साहब एक्सीलेटर को दबाना होता है, ठीक है ना, तो एक्सीलेटर को दबाना आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये है यहाँ पर जो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं ना कि वमन ताबा व अमिला सालिहन, ठीक है, अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं जिसको कि हम इस मिसाल में ऐसे समझाते हैं कि वमन ताबा, जिसने तौबा कर ली यानी जिसने यू टर्न ले लिया, जिसने यू टर्न ले लिया, ठीक है, वह अमिला सालेहन और उसने नेक अमाल भी किए। नेक अमाल करने का मतलब ये है कि यू टर्न लेने के बाद उसने अपनी गाड़ी को बंद नहीं कर दिया बल्कि एक्सेलेटर के ऊपर पैर दबाए रखा, गाड़ी को चलाए रखा, गाड़ी को बंद नहीं कर दिया बल्कि गाड़ी को चलाए रखा। फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो वो अल्लाह ताला के पास जो मताब वाली जगह है वो वहां तक पहुंच जाएगा क्योंकि इसकी गाड़ी चल रही है, ये नेक आमाल کر رہا ہے تو یہ منزل تک پہنچ جائے گا. لیکن جس نے توبہ تو کر لی, پلٹ تو گیا, لیکن نیک اعمال اس نے کچھ بھی نہیں کیے, تو اس کا سفر رکا ہوا رہے گا. یہ یتوبو الی اللہ متابہ کے اوپر عمل نہیں کر رہا, یعنی یہ اللہ تعالی کے پاس جو متاب ہے نا, متاب والا جو مقام ہے, یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو صرف جو ہے نا وہ یو ٹرن نہیں کرنا ہوتا, یو ٹرن کرنے کے بعد نیک اعمال بھی کرنے ہوتے ہیں. نیک اعمال کرنے سے پھر آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں, ورنہ نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر تو ایک بات ہوئی. اب اس کے بعد نا ایک دوسرا بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جس کو کہ ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے جہاں پہ لکھا ہوا تھا جو چیزیں, وہ ابھی میں نے کھولی ہیں اصل میں, تو معذرت کے ساتھ اب میں اس کو پڑھتا ہوں. کہ ایک صاحبہ نے لکھا تھا کہ اٹ از سیم ایز ون ڈونٹ لائک واچنگ ٹی وی سو شی ڈونٹ بٹ شی ڈونٹ کنسیڈر اٹ بیڈ سو توبہ از نیڈیڈ. کسی کو ٹی وی دیکھنا اچھا نہیں لگتا سو اس وجہ سے وہ ٹی وی نہیں دیکھتا, لیکن وہ ٹی وی دیکھنے کو برا نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, تو دیٹ از وائی توبہ از نیڈیڈ. ہاں, یہ اس طرح سے ہوگا کہ اس کو خود تو ٹی وی دیکھنا اچھا نہیں لگتا. اب یہ ٹی وی دیکھنا اچھا نہیں لگنا سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ کی کیا مراد ہے ٹی وی دیکھنا اچھا نہیں لگتا؟ اگر اس سے یہ مراد ہے کہ ٹی وی کے اوپر جو ڈراما آ رہا ہے یا جو سیریل آ رہا ہے, انڈیا میں سیریل کہتے ہیں آپ لوگ, پاکستان میں ہم لوگ کہتے ہیں ڈراما آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ٹی وی پہ جو ڈراما سیریل آ رہا ہے نا, وہ سیریل آپ کو اچھا ہی نہیں لگتا. اس کے اندر کوئی ایسی, یعنی اس کے آرٹسٹ آپ کو اچھے نہیں لگتے, اس کا ہیرو آپ کو اچھا نہیں لگتا, ہیروئن آپ کو اچھی نہیں لگتی, اس کا پلاٹ آپ کو اچھا نہیں لگتا, اس وجہ سے آپ اس ڈرامے کو نہیں دیکھتی. ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ہے وہ ڈرامے دیکھنے کو برا نہیں سمجھتی. کہ اگر کوئی آپ کا, جیسے آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈراما دیکھ رہا ہے, تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں, ہاں بھائی ٹھیک ہے مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں نہیں دیکھ رہی یہ ڈراما, لیکن میرا بیٹا دیکھ رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے, دیکھتا رہے بہت اچھی بات ہے, وہ اس کا شوق ہے بھی ڈرامے دیکھنے کا, اس کو دیکھنا چاہیے. تو آپ کے دل میں نا اس ٹی وی کو دیکھنے کی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا, یہ کیا ہے, یہ ہے کہ بھائی آپ اس گناہ میں مبتلا ہیں, بس آپ ایک ڈرامہ نہیں دیکھ رہی, لیکن کل کو کوئی دوسرا ڈرامہ آ جائے گا جو کہ آپ کو اچھا لگے گا, اس کا پلاٹ آپ کو اچھا لگے گا, اس کی سٹوری, اس کے جو ایکٹرز ایکٹریسز ہیں وہ آپ کو اچھے لگتے ہوں گے, تو آپ دیکھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یو آر ایکچولی یو آر ناٹ ان اے سٹیٹ آف توبہ. ٹھیک ہے, بس آپ جو ہے وہ ایک عمل نہیں کر رہی اس وقت, لیکن یو آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ عمل ایز سون ایز کہ وہ عمل آپ کو ذرا پسند آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ہاں اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پھر توبہ از نیڈیڈ. ٹھیک ہے, کہ ٹی وی دیکھنے سے بھی آپ کو توبہ کی ضرورت ہے. اچھا, اب یہ لکھ رہی ہیں کہ نو اوور آل آئی فیل آئی آلویز فیلٹ اٹس اے ویسٹیج آف ٹائم, دیٹس وائی آئی ڈونٹ. کہ آپ ٹی وی دیکھنے کو جو ہے نا وہ وقت کا ضیاع سمجھتی ہیں, اس وجہ سے آپ ٹی وی نہیں دیکھتی. تو اس وجہ سے اگر آپ ٹی وی نہیں دیکھتی نا, تو اس کے اندر یہ والی غلطی ہوگی کہ ٹی وی کے اندر کیا ویسٹیج آف ٹائم از دی اونلی تھنگ دیٹ یو تھنک از بیڈ. ٹھیک ہے, یا یہ کہ اس کے اندر جو موسیقی ہوتی ہے, اس کے اندر جو بدنظری ہوتی ہے, کہ آپ جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے نا, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو. تو جب آپ ٹی وی دیکھتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اتنے ہیرو ہیروئن ہیرو جو ہوتے ہیں, تو وہ سارے کے سارے مرد ہوتے ہیں نا, تو عورتیں جو مردوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو برا نہیں سمجھتی, اس کے اندر جو موسیقی ہے اس کو برا نہیں سمجھتی, اس کے اندر جو افیئرز والی کہانیاں ہوتی ہیں اس کو برا نہیں سمجھتی, ہے نا. تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے کہ اتنا ڈیپ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, اتنا ڈیپ کیوں نہیں سوچا تھا آپ نے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دین کا علم نہیں تھا. ठीक है ना, आपको पता नहीं था कि हमारे दीन में क्या चीज़ हराम है और हमारे घर के अंदर वो हराम चीज़ें हो रही हैं, इसी वजह से तो इल्म हासिल करना जो है वो फ़र्ज़ है ना, ठीक है ना। ये तो फ़र्ज़ आयन वाला इल्म है कि क्या गुनाह हैं मेरे घर में, कौन कौन से गुनाह हो रहे हैं, टीवी पे कौन कौन से गुनाह आते हैं जो टीवी मेरे घर में रखा हुआ है, ये फ़र्ज़ आयन है, ठीक है ना। तो आपने इसीलिए नहीं सोचा क्योंकि आपने कभी फ़र्ज़ आयन का इल्म हासिल करने की अभी तक मेहनत नहीं करी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप कर रही हैं। तो अल्लाह ताला आपके इस बारे पिछली जो सारी जिंदगी में आपने ये गुनाह किया है कि फ़र्ज़ आयन का इल्म हासिल नहीं किया, उस गुनाह को अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। दीन एसेंशियल्स का मतलब ही ये है, एसेंशियल्स राइट, फ़र्ज़ आयन वाला दीन, ठीक है ना, जो कि हर एक के लिए हासिल करना लाजिम है। तो आप इसका हिस्सा बनी हुई हैं, अल्लाह ताला क्या अल्लाह ताला आपके इस हिस्सा बनने को आपकी तौबा के तौर पर कबूल फरमा ले। जैसे जैसे आपको पता चलता चले जाएगा चीज़ों का, वैसे वैसे आप उनसे तौबा करती रहेंगी। तो ऐसे ही होता है, ठीक है, कि भाई हमने चूंकि इल्म नहीं हासिल किया होता तो हम गुनाह कर रहे होते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं, ठीक है ना। बस व्हाट्सएप के ऊपर अल्लाह की विलायत, अल्लाह की मोहब्बत के मैसेजेस डालते रहते हैं और समझते हैं कि हम तो अल्लाह ताला के महबूब तरीन बनते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हम अल्लाह ताला की कैसी कैसी जो है ना वो नाफरमानी और अल्लाह ताला के साथ कैसी कैसी जो है ना वो ज्यादतियां और जुल्म हमने रवा रखे हुए हैं। आजकल बस यही चल रहा है सारा का सारा मामला, ठीक है। खैर, आप, मैं नहीं कह रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कबायर के मुर्तकिब हो रहे होते हैं और साथ साथ व्हाट्सएप के ऊपर अल्लाह की मोहब्बत के एक से एक जो है ना दवा दवा करके मैसेज लिख रहे होते हैं, जिससे पता लगता है कि ये आपसे बड़ा तो अल्लाह का वली और कोई दुनिया में था ही नहीं कभी ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए फ़र्ज़ आयन का इल्म हासिल करना ज़रूरी है ना, तो पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। खैर, ये एक जनरल बात ही, आपके मुतालिक नहीं थे। अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल फरमा ले और अपने मकबूल बंदियों में आपको शामिल फरमा ले। अच्छा, और क्या लिखा था कि जी गुनाह किया तो नहीं, अभी भी आप कह रही हैं गुनाह किया तो नहीं। भाई, आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़र्ज़ आयन का इल्म हासिल ना करना ये गुनाह है, फ़र्ज़ आयन का इल्म हासिल ना करना ये वाला गुनाह तो किया है कि नहीं किया है? हाँ कि नहीं, जवाब दें। फ़र्ज़ आयन समझती हैं एसेंशियल राइट, एसेंशियल्स का इल्म हासिल करना नहीं किया, ये गुनाह तो किया ना आपने कम से कम, अगर कोई ना भी किया हो ये तो कम से कम किया है ना, ठीक है ना। तो इसको तो कम से कम तस्लीम करके इसके ऊपर तो तौबा करनी पड़ेगी ना। अच्छा, और किसी ने लिखा था कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे का क्या मतलब है, अल्लाह के सिफात पे गौर करने का मतलब? नहीं, अल्लाह ताला की सिफात पे गौर करना इसका मतलब नहीं होता। अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला का ध्यान रखना कि अल्लाह ताला मुझे हर वक्त देख रहे हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला की शान सबसे बड़ी है, अल्लाह ताला के मेरे ऊपर एहसानात हैं, ठीक है, सब कुछ मेरे पास जो है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है। तो ये अपने जहन में इसका इस्तेहजार रखना, इसका ध्यान रखना, ठीक है, और ये एक इस कैफियत में रहना कि मैं कैसे अल्लाह की नाफरमानी कर सकता हूँ, कैसे अल्लाह ताला के साथ यानी झूठ बोल सकता हूँ, या अल्लाह ताला को धोखा देने की कोशिश कर सकता हूँ, या मैं क्या कैसे हो सकता है सब कुछ, ठीक है। तो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में गौर व फिक्र करना, इतना इतने टेक्निकल होने की कोई जरूरत नहीं होती है, इतना ज्यादा जो है ना वो बकराती बनने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। बस सीधा सीधा भाई जो कुछ मेरे पास है अल्लाह का दिया हुआ, ठीक है, और इतना ही सिफत अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला जो है वो देखने वाले हैं, अल्लाह ताला सब कुछ सुनते हैं, इतना तो एक आम बच्चों को भी आप ये बात सिखा सकते हैं ना, ठीक है ना। तो इतना ही ध्यान जो होता है ना वो इंसान को गुनाह से रोकने के लिए काफी होता है, लेकिन हम इस बात को भी हम भूल जाते हैं कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ताला सुन रहा है, ठीक है ना। इस बेसिक नॉलेज को भी हम जो है ना वो अपने ध्यान से निकाल देते हैं, इस वजह से फिर हमसे गुनाह होता है। अच्छा, व्हेन वी से एनी तस्बीह ड्यूरिंग हाउस होल्ड वी आर नॉट अटेंटिव, मीन्स ड्यूरिंग कुकिंग डस्टिंग आवर माइंड इज विद किड्स बट वी आर डूइंग तस्बीह और इस्तिगफार, इज इट गाफिल बिहेवियर ऑल्सो? नहीं, इट इज नॉट गाफिल बिहेवियर, ठीक है। वाई? बिकॉज जब आप अपने घर के कामकाज के दौरान घर के कामकाज के साथ साथ तस्बीह पढ़ रही होती हैं, ठीक है, तो कुकिंग डस्टिंग ये आपने लिखा ना, कुकिंग और डस्टिंग के साथ आप तस्बीह पढ़ी होती है, तो कुकिंग के अंदर आप सुअर का गोश्त नहीं पका रही होती, या आप शराब तो नहीं कुक कर रही होती, आप क्या कुक कर रही होती हैं? एक हलाल खाना कुक कर रही होती है ना, एक हलाल चीज या एक हलाल मिल्क शेक बना रही होती हैं किचन के अंदर। तो ये जो हलाल काम होता है ये गुनाह तो नहीं होता, ठीक है, ये गुनाह तो नहीं होता। डस्टिंग आप कर रही होती हैं तो डस्टिंग करना जो है वो गुनाह का काम तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो गफलत उसको कहते हैं कि जिसके अंदर आप गुनाह में मुबतला हो रहे हो, ठीक है ना। तो आप यानी जुबान से जो है वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन आप किसी गुनाह यानी जुबान आपकी तस्बीह कर रही है लेकिन आंख आपकी गुनाह कर रही है, ठीक है, कान आपके गुनाह कर रहे हैं। कैसे? कि आप मजे ले लेकर के जो है वो किसी की गीबत सुन रही हैं, तो जुबान आपकी तस्बीह कर रही है, कान आपके गुनाह कर रहे हैं, या आंखों से जो है ना वो किसी हराम चीज को देख रही हैं, ठीक है, जुबान तस्बीह कर रही है लेकिन आंख गुनाह कर रही है, इसको कहते हैं गफलत की तस्बीह, ठीक है ना। डस्टिंग और कुकिंग जो है ये गुनाह का काम नहीं है, इस वजह से ये तस्बीह जो है ना ये गफलत की तस्बीह नहीं कहलाएगी। तो इस तस्बीह के ऊपर जो है ना आपको सवाब मिल रहा होगा, ठीक है ना, हर मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का जो सवाब है ना वो आपको मिल रहा है, नामे आमाल के अंदर लिखा जा रहा है, और जो भी आप पढ़ रही हैं उसके हिसाब से आपको सवाब मिल रहा है, ठीक है। तो गफलत का मतलब ये नहीं होता कि आप जुबान से सुबहान अल्लाह पढ़ते हुए अगर कुकिंग का काम कर रही हैं तो ये गफलत वाला जिक्र या गफलत वाली तस्बीह है, ये इसका मतलब नहीं होता है। इस ध्यान का नाम है, नाम ही वुकूफ़ कल्बी होगा। जी बिल्कुल, हमारे मशायख के यहाँ जो मामूलात में से एक मामूल है ना वुकूफ़ कल्बी का मामूल, उसका यही मतलब होता है कि अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रखना यानी इल्म और इरादे से गुनाह ना करना, ठीक है। अब जैसे कि आप घर के अंदर डस्टिंग कर रही हैं, ठीक है ना, तो डस्टिंग करते हुए ना आपको कोई किताब नजर आई तो आपने सोचा कि अच्छा जी मैं इसको इसको भी जरा डस्टिंग कर लूँ इस किताब के ऊपर भी, ठीक है, बड़ी डस्ट जमी हुई है, बड़े अरसे से मैंने इस किताब को नहीं देखा, आप भूल गई हैं उस किताब के अंदर क्या है, तो आपने उस किताब को उठा करके जरा सा पेज पलटने शुरू कर दिए कि देखें तो सही इसके अंदर क्या था, ठीक है। तो वो देखते देखते ना उस किताब के अंदर कोई ऐसी तस्वीरें थी जिनके ऊपर आपकी नजर पड़ गई, जो कि आपको याद भी नहीं थी कि उसके अंदर ऐसी तस्वीरें हैं, आपकी नजर पड़ गई उनके ऊपर, ठीक है। तो वो जो तस्वीरें थी हराम तस्वीरें थी, आपको नहीं देखना चाहिए था लेकिन नजर पड़ गई, ये इल्म और इरादे वाला गुनाह नहीं था, क्योंकि आपने इरादतन के अच्छा मैं देखूं तो जरा उसके अंदर वो जो सारी तस्वीरें थी वो मैं जरा दोबारा देखूं उनको, ये आपका इरादा तो नहीं था ना, वो तो डस्टिंग करते हुए आपने उसको जो देखा तो आपकी नजर पड़ गई उनके ऊपर, ठीक है। तो ये भी जो है ना इल्म और इरादे वाला गुनाह नहीं कहलाता, बल्कि ये बिला इरादा गुनाह हो गया, और बिला इरादा गुनाह की निशानी ये होती है कि जब आपकी नजर पड़ी ना उनके ऊपर तो आपने फौरन कहते हैं ना अल्लाह तौबा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कह करके उसको बंद किया और उसको यानी या तो आपने वापस रख दिया, या ये कि अगर आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि आप उस किताब को उठा करके फेंक सकती हैं तो आपने उठाकर उसको फेंक ही दिया, या उसके जो वो पेजेस थे ना उन पेजेस को आपने फाड़ करके फिर उसको डस्टबिन के अंदर कुतर कुतर करके उसको डस्टबिन के अंदर फेंक दिया, ठीक है ना। तो अगरचे कि आपकी निगाह पड़ गई थी लेकिन आपका ये जो अमल है ना इससे ये बात कंफर्म हो गई कि आपका इरादा बिल्कुल भी नहीं था ये तौबा ये गुनाह करने का, ठीक है। तो ऐसे जो गुनाह हो जाते हैं ना जिसका आपका पहले से इरादा नहीं होता, ये अल्लाह ताला की तरफ ध्यान के मुनाफी नहीं होते, ठीक है। आपने अभी बोला कि आजकल हम लोग व्हाट्सएप पर स्टेटस रखते हैं और कबायर में भी मुबतला होते हैं, यही हाल है हमारा, लेकिन हम तौबा भी करते हैं एंड ट्राई करते हैं नेक बनने की, सो शुड आई कंटिन्यू पुटिंग व्हाट्सएप पर स्टेटस। व्हाट्सएप के ऊपर हमने विलायत वाले जो स्टेटस रखे हुए होते हैं ना, तो उन स्टेटस के रखने से जो है ना ये आपका जो नेक बनने की जो डिज़ायर है, ठीक है, तो ये नेक बनने की डिज़ायर जो है ना, उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए यू हैव टू टेक सम स्टेप्स, ठीक है। तो वो जो स्टेप्स आपको लेने होते हैं ना, तो उन स्टेप्स में से ये व्हाट्सएप के ऊपर विलायते कुबरा वाले जो मैसेजेस डालते रहते हैं ना, कभी आयत, कभी हदीस, कभी कोई इस किस्म का कॉल, ठीक है ना, ये जो स्टेप्स है ना, दीज आर वेरी 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 टाइनी स्टेप्स, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप के ऊपर अच्छे अच्छे मैसेजेस डाल देना जो है ना, इससे जो है ना वो आपकी ये जर्नी जो है ये बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रही हैं ये मैसेजेस डाल करके व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत स्टेप्स ले रही हैं, नहीं, स्टेप्स तो आप ले रही हैं, लेकिन इन स्टेप्स से जो है ना, ये इतने छोटे स्टेप्स हैं कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकेंगी ज्यादा, बल्कि बहुत लंबा अरसा आपको लगेगा आगे बढ़ने में, ठीक है। तो इस वजह से ना, इन चीजों के अंदर आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा होता है, टाइम तो लग रहा है ना आपका, हर वक्त जो है बैठ करके व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस चेंज कर रही है, कभी कोई चीज डाल रही, कभी कोई चीज डाल रही, कभी कोई चीज डाल रही, ठीक है ना। एक तो आपका वक्त जाया हो रहा है, ठीक है, इन कामों के अंदर जिनमें कि आपका सफर ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, लेकिन टाइम तो लग रहा है आपका। और दूसरा इसके अंदर नुकसान ये होता है कि शैतान जो है ना, वो आपको आपके दिल में ऐसे ख्याल डालता है कि वो आपको सेटिस्फाई करके रखता है कि देखो तुम कितना अच्छा काम कर रही हो, कितना जबरदस्त तुमने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाया है। और दूसरे जो जो सोशल मीडिया के, वो हर एक का पता नहीं अपना कोई नाम होता है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी और चीज को यूज ही नहीं करता, व्हाट्सएप तो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि उसके बगैर हमारा सिस्टम ही नहीं चल सकता। बाकी जो है पता नहीं, फेसबुक के अंदर शायद इसको वॉल कहते हैं, वॉल पे लगाया मैसेज, क्योंकि लोग लिखते रहते हैं इस तरह की बातें व्हाट्सएप के ऊपर कि फेसबुक की वॉल पे ये लगाया, तो वो वॉल पे कुछ लगाते रहते हैं, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम के अंदर इसको कुछ और कहते होंगे, और किसी चीज में इसको कुछ और कहते होंगे, ठीक है। तो शैतान क्या क्या करता है, शैतान जो है ना, वो दिल में एहसास डालता है कि देखो तुम कितने अच्छे काम कर रही हो, तुम कितने अच्छे मैसेजेस लगा रही हो, वाह 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 क्या बात है तुम्हारी, ठीक है। तो अगरचे कि आप जो है ना वो टाइनी स्टेप्स ले रही हैं, लेकिन उन टाइनी स्टेप्स को शैतान जो है ना, वो बहुत बड़े स्टेप्स बना करके पेश कर रहा है, ठीक है ना, बहुत मैग्निफाई करके आपके सामने पेश कर रहा है। सो बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग और व्हाट ही इज अचीविंग इज मेकिंग यू कंटेंट विद व्हाट एवर यू आर डूइंग, एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड, बड़ा जबरदस्त काम कर रही हो भाई तुम, ठीक है। तो इससे जो है ना, आपको दोहरा नुकसान हो रहा है, एक तो आपका सफर तय नहीं हो रहा, दूसरा आप धोखे में मुबतला हो रही हैं कि देखो मेरा कितना जबरदस्त सफर तय हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ना, अल्लाह की तरफ बढ़ने वाला जो सफर है ना, ये अपने सेल्फ डिफाइंड तरीकों से नहीं तय हो सकता कि जी चलो मैं अब जो है ना वो ये करना शुरू कर दूं, या मैं जो है वो उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर वॉल लगाना शुरू कर दूं, या अब जो है ना मैं हर हदीस वाला जो मेरे पास मैसेज आए तो मैं उस मैसेज को जो है ना वो 100 लोगों को आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर दूं, तो मेरा सफर अल्लाह की तरफ तय होना शुरू हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू डू इट, दिस इज नॉट हाउ इट इज डन, ठीक है ना। ये सफर जो होता है ना, ये जो हमारे अकाबरीन है ना, उन अकाबरीन धक्का दे देगा, और उसका धक्का भी देना ऐसा होता है कि बंदे को पता भी नहीं लगता कि वो पीछे जा रहा है, वो यही समझ जी मेरी आवाज आ रही है तुमको? एक मिनट, जी मेरी आवाज़ नहीं आ रही किसी को? दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट किया है। इनको अभी भी नहीं आ रही जी? सबको आवाज आ रही? ओके, अच्छा, तो आपके सवाल का जवाब आपको मुकम्मल सुनाई दिया था कि व्हाट्सएप के ऊपर जो हम मैसेजेस डालते हैं, क्या हमें डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, क्या इसके अंदर दो खराबियां हैं? जी पूरा नहीं सुना। अच्छा, ये साजिश ने कहा था कि व्हाट्सएप के ऊपर जो हम बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस डाल रहे होते हैं ना, ठीक है, तो उसके अंदर दो खराबियां होती हैं, ठीक है। एक खराबी ये होती है कि ये जो नेकी के मैसेजेस डालना होता है, तो ये मैसेजेस तो अच्छे मैसेजेस होते हैं, ठीक है, लेकिन इस मैसेजेस के डालने से आपका जो अल्लाह की मोहब्बत का सफर है, ये बाकायदा एक सफर होता है, ये एक जर्नी होती है, ठीक है, ठीक है। जब भी आपको वो गाड़ी वाली मिसाल दी थी ना कि गाड़ी के ऊपर आप सफर तय कर रहे होते हैं, गाड़ी जो है वो यू टर्न लेती है, यू टर्न लेने के बाद फिर उसको मजीद आगे सफर करना होता है, ठीक है, तो ये एक जर्नी है, ठीक है। इसी को सलूक भी कहते हैं, सुलूक का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी के अंदर आपके स्टेप्स होते हैं, ठीक है, आपकी स्पीड मैटर करती है कि आप कितनी स्पीड से इस जर्नी को तय कर रहे हैं, या कितने बड़े बड़े आप जो है वो कदम ले रहे हैं इस जर्नी के ऊपर। अगर आप बहुत छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, तो आपका ये सफर जो है वो बहुत लंबे अरसे में तय होगा, है ना। अगर आप बड़े बड़े कदम ले रहे हैं, तो ये सफर आपका जल्दी तय हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये टर्मिनोलॉजीज हमें मालूम होनी चाहिए कि ये सफर होता है, सफर के अंदर जो है वो इंसान के कदम जो है वो कितने हैं, ये मैटर करते हैं ना, ठीक है। तो अगर आपने ये बात समझ ली है, तो बात समझें कि ये जो व्हाट्सएप के ऊपर अच्छे अच्छे मैसेजेस डालना है ना, ये जो है वो हैं तो अच्छे काम, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये बहुत टाइनी टाइनी स्टेप्स हैं आपके, ठीक है ना। तो इनको मैं गुनाह का काम नहीं कह रहा कि ये गुनाह कर रही हैं आप, नहीं, आप कर रही हैं अच्छे काम, लेकिन बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हैं, ठीक है। तो इस छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर आपका वक्त तो लग रहा है ना, राइट, वक्त तो आपका इसके अंदर लग रहा है। इसी वक्त के अंदर आप बड़े स्टेप्स भी ले सकती थी, लेकिन आपने बड़े स्टेप्स लेने की बजाय छोटे स्टेप्स लिए, तो आपका वक्त जो है वो ज्यादा कट गया, लेकिन सफर आपका ज्यादा नहीं कटा, ठीक है। तो ये पहला नुकसान है। ये सबने कैच किया? किसी को ना समझ में आई हो ये बात? किसी को नहीं समझ में आई है तो प्लीज पूछें, कि वक्त आपका ज्यादा कट रहा है, सफर आपका कम कट रहा है, ठीक है ना? ये पहला नुकसान है, ओके? दूसरा नुकसान ये है कि एक चीज होती है शैतान, है ना? तो शैतान जो है वो आपको अच्छी चीज को बुरा बना करके पेश करता है, बुरी चीज को अच्छा बना करके पेश करता है, ठीक है ना? तो शैतान का तो यही काम होता है ना, डिसीवर, राइट, द ट्रिक्स्टर, धोखेबाज, है ना? तो शैतान क्या कर रहा होता है कि शैतान ये करता है कि उसको इतना तो नजर आ रहा है ना कि आप नेकी का काम कर रही हैं, व्हाट्सएप के ऊपर अच्छे अच्छे मैसेजेस डाल रही हैं या फेसबुक के ऊपर अच्छी अच्छी वॉल्स लगा रही हैं, ठीक है ना? तो वो ये देख रहा है कि भाई हाँ, ये बंदी जो है ना, ये नेक बनना चाहती है, नेकी का काम कर रही है, ठीक है? लेकिन वो चाहता है कि ये अपना सफर तय ना कर सके, ये अल्लाह ताला के मताब तक, अल्लाह ताला के वसल तक ना पहुंच सके। तो अब वो क्या करता है, वो ये करता है कि अगरचे कि आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हैं, लेकिन उसको ये खदशा लगा होता है कि भाई कहीं ये छोटे छोटे स्टेप्स से बढ़ करके बड़े बड़े स्टेप्स ना लेना शुरू कर दे। उसको ये खदशा लग जाता है अब कि कहीं इसके स्टेप्स जो है ना वो बड़े बड़े ना होने शुरू हो जाएं। तो अब वो ये करता है कि वो आपके इन छोटे छोटे स्टेप्स को बहुत बड़ा बना करके आपके सामने पेश करता है, आपके दिल में इस तरह के ख्याल डालता है कि तुम बड़ा जबरदस्त काम कर रही हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम जो है वो अपने यानी हजारों जानने वालों तक जो है वो दीन का पैगाम पहुंचा रही हो, ठीक है? तो कितना बड़ा काम है, कितना तुम्हें इसके ऊपर सवाब मिल रहा होगा, ठीक है ना? हालांकि आपको इसके ऊपर कोई सवाब नहीं मिल रहा, या बहुत थोड़ा सवाब मिल रहा है, ठीक है, बहुत थोड़ा सवाब मिल रहा है, लेकिन वो आपको यकीन दिलाएगा कि नहीं, तुम बहुत जबरदस्त काम कर रही हो, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ना, आप शैतान के धोखे में आ जाते हैं और आप समझते हैं कि बस मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि इंसान का फिर अब जो है ना, वो बहुत ज्यादा वक्त जो है वो इन्हीं कामों के अंदर लग रहा होता है, जिस वक्त के अंदर वो कोई बहुत बेहतर काम कर सकता था, और साथ साथ जो है वो इस धोखे में भी उबतला होता है कि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हालांकि वो बहुत कम अच्छा काम कर रहा है, ठीक है? तो ये दो बहुत बड़े बड़े नुकसानात होते हैं, ठीक है? इसी वजह से जो अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता है ना, वो रास्ता जो है वो सिर्फ सुन्नत तरीके से तय हो सकता है, सुन्नत तरीके से तय हो सकता है, वो अपने खुद साख्ता नेकियां करने से ये अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता तय नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि हम छोटी नेकी को बहुत बड़ा समझ करके कर रहे होते हैं, हालांकि उससे हमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा होता, ठीक है? तो सुन्नत तरीका क्या है? सुन्नत तरीका वो तरीका है जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया और उनसे हमारे मशाइख ने सीखा और हमारे मशाइख हमें सिखाते हैं, ठीक है ना? हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते हैं, उलमा और मशाइख, वो जो हमें तरीका बताते हैं ना, वो होता है सुन्नत तरीका, ठीक है? तो इस वजह से ना, ये काम जो अगर हम कर रहे हैं ना, तो हमें ये चाहिए कि हम जो हैं वो इस तरीके से जो है वो नेकियां करने के बजाय हम जो है वो किसी सिलसिले के अंदर जुड़ें और उसके अंदर जो हमें नेकियां करने का तरीका बताया जा रहा है ना, उस तरीके से हम नेकियां करें, तब हमारा जो सफर है ना वो तेजी से के साथ कटेगा, तेजी के साथ कटेगा, और शैतान के जो धोखा देने के रास्ते हैं ना, वो रास्ते भी बंद हो जाएंगे, ठीक है? अदरवाइज फिर यही सारी चीजें हमारे साथ चलती रहती हैं कि वक्त भी जाया हो रहा होता है और जो है वो हम अपने बारे में बहुत खुशफहमी में भी मुबतला होते हैं, बहुत खुशफहमी में मुबतला होते हैं। आप लोगों को एक बात बताते हैं, ठीक है, जो कि अभी हमने करनी करने का इरादा किया हुआ है लेकिन अभी करी नहीं है, ठीक है ना? हमारे हजरत जो है ना, शेख पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी दामद वक़ात, ठीक है, नाम आपने शायद आपने सेक्शन में सुना होगा, तो पिछले दिनों जो है ना, वो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी खवातीन ने, ठीक है ना, एक नहीं दो नहीं कई खवातीन ने अपने घरेलू मसाइल डिस्कस किए। ठीक, घरेलू मसाइल तो बहुत सारे मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं ना, लेकिन एक खास नौइयत का घरेलू मसला डिस्कस किया कि उनके जो शौहर है ना, वो शौहर उनको तवज्जो नहीं देते, शौहर उनके साथ अच्छे नहीं है। ठीक है, शौहर उनके साथ अच्छे नहीं है। ये हर घर का मसला नहीं होता कि शौहर अच्छा नहीं होता, ठीक है ना, दूसरे हर घरों के अंदर मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, कहीं पे शौहर अच्छे होते हैं, बहुत सारे घरों में शौहर अच्छे होते हैं, ठीक है ना, वो बीवियां कहती हैं कि नहीं शौहर तो हमारे बिल्कुल ठीक है, सारा मसला जो है वो सास का है। ठीक है ना, कुछ घर होते हैं शौहर जी हमारे बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला जो है ना वो नंदों का है, वो सुसर साहब का मसला है, या ये कि शौहर बिल्कुल ठीक है, मसला जो है ना वो हमारे कारोबार वगैरह का मसला है, कारोबार नहीं चल रहा होता, कारोबार के अंदर ये प्रॉब्लम्स। ठीक है, या कुछ घर ऐसे होते हैं शौहर बहुत अच्छे हैं लेकिन बच्चे नाफरमान बने हुए, है ना, तो शौहर अच्छे होते हैं बहुत सारे घरों में, या बीवी कम से कम उनको अच्छा समझती हैं, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास मामलात आए हैं कि मसला ही शौहर के साथ, शौहर ही अच्छे नहीं है, सास का अच्छा ना होना, या रिस्क का अच्छा ना होना, या बच्चों का अच्छा ना होना, या किसी और का अच्छा ना होना, वो तो दूसरी बात, शौहर ही अच्छा नहीं है उनके साथ। ठीक है ना, शौहर जो है वो उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता, शौहर उनको जो है वो उनके साथ यानी बहुत ही बदजुबानी करता है, गुस्सा करता है, मारपीट करता है, या शौहर जो है वो दूसरों के चक्कर में लगा हुआ है, राइट, दूसरी औरतों के चक्कर में लगा हुआ है। ठीक है ना, या तो शादी कर चुका है, या शादी करने की धमकियां देता रहता है, या जो है वो शादी करने के अलावा ही जो है वो नाजायज तरीके से दूसरी औरतों के साथ गिरफ्तार हुआ है। तो ये जो सिनारियो है ना, शौहर अच्छा नहीं है बीवी के साथ, ठीक है ना, तो ये वाले केसेस हमारे पास कई आए हैं, मेरे पास भी, मेरी वाइफ के पास भी, या हम दोनों के पास। ठीक है, कई लोगों ने अपने ये मसले बयान किए, तो अब हम जो है ना इनको यानी सोच ही रहे हैं कि जी हम इनको कैसे समझाएं। ठीक है, क्योंकि असल हकीकत तो ऐसी होती है कि जो कि बंदे सुनना नहीं चाहते, ठीक है ना, ये वो खवातीन सुनना नहीं चाहेंगे असल हकीकत को। ठीक है, तो अल्लाह की तरफ से ये हुआ मामला अजीब कि मुझे किसी की तरफ से ना एक अपने शेख मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी दामतम का एक बयान का टुकड़ा मिला। ठीक है ना, उस बयान के टुकड़े के अंदर हजरत ने एग्जैक्टली यही बात करी कि बीवियां जो हैं वो ये बहुत सारी बीवियां, सारी बीवियां नहीं, बहुत सारी बीवियां ये कंप्लेन करती रहती हैं शौहर उनके साथ अच्छा नहीं है, शौहर उनको तवज्जो नहीं देता, शौहर जो है वो उनके साथ ऐसा करता है, शौहर दूसरी भी औरतों के चक्कर में रहता है, तो उन औरतों को क्या करना चाहिए। ठीक है ना, अब सब सोच रही होंगी वो वजीफा बताया होगा हजरत ने कोई, है? नहीं, वजीफा कोई नहीं बताया उन्होंने, ठीक है ना, बल्कि उन्होंने ये उस पूरे बयान में ये समझाया कि बीवी का ये काम है कि वो अपने गुनाहों को छोड़े, जिन गुनाहों में वो मुब्तला है वो उनको छोड़े, अल्लाह ताला को राजी करे। ठीक है, अल्लाह ताला को राजी करे तो अल्लाह ताला उसके शौहर के दिल में इसकी मोहब्बत को पैदा करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला शौहर के दिल में इसकी मोहब्बत को पैदा करेंगे। ठीक है ना, तो अब वो बयान तो मेरे पास आ गया और दिल तो यही चाह रहा था कि फौरन से भेजूं सबको, दीन एसेंशियल्स ग्रुप के ऊपर भी भेजूं और आलिमात सालिकात ग्रुप के ऊपर भी भेजूं, राइट, सारी खवातीन को ये बयान फौरन से सुनाओ। ठीक है ना, लेकिन रुक गए। ठीक है, और यही फिर यानी मेरे भी दिल में यही बात आई और मेरी बीवी के दिल में भी यही बात आई कि ये बयान सुन तो लेंगी, लेकिन जो हजरत यहाँ पे कह रहे हैं ना उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। ठीक है, सारे यही सोच रहे होंगे मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैं तो गुनाह नहीं करती, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं तो मजलूम हूं, शौहर जालिम है, राइट, میں تو مظلوم ہوں، شوہر ظالم ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ شوہر نے سارا گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اصل مقصد ہے نا اس بیان کا، وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ارادہ یہ کیا تھا کہ کچھ اس کے اوپر تھوڑا سا لکھ کر کے پھر بھیجیں، کچھ اس کے ساتھ نا کچھ کامنٹس ڈال کر کے بھیجیں، اور وہ چونکہ اب سفر پہ کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، کل سے جب یہ بیان آیا اس کے فوراً بعد سفر پہ نکلنا ہو گیا، تو اس وجہ سے ابھی تک اس کو لکھنے کا پورا مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بیویاں بھی جو ہوتی ہیں نا اس خاص معاملے کے اندر، ٹھیک ہے، بیویاں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ شوہر ہی کو خالی قصوروار سمجھ رہی ہوتی ہیں، اپنے قصور نظر نہیں آ رہے ہوتے، اپنے گناہ نہیں نظر آ رہے ہوتے، اپنے گناہوں کو معلوم کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں کیا غلطی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرف بالکل دھیان نہیں ہوتا، یا ان لوگوں سے بالکل کانٹیکٹ نہیں ہوتا کہ جو کہ آپ کو آپ کی تصویر دکھانے میں دلچسپی رکھتے ہوں، آپ کو آئینہ دکھانے میں دلچسپی رکھتے ہوں، تاکہ آپ اپنی اصلاح کر لیں آئینے کو دیکھ کر کے. ہم ان لوگوں کے پاس نہیں پھٹکنا چاہتے جو کہ ہمیں آئینہ اس نیت کے ساتھ دکھائیں، خیر خواہی کی نیت سے دکھائیں کہ ہم اس آئینے میں اپنی اصل شکل دیکھ کر کے اپنی اصلاح کر لیں. ہم ان لوگوں کے پاس نہیں پھٹکنا چاہتے کیونکہ ہم اپنی اصل شکل نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے گناہوں کو بالکل اگنور کریں اور ہماری تعریفیں کرتے رہیں ہر وقت، ہمیں پمپ کرتے رہیں ہر وقت، رائٹ، ہمیں بٹرنگ کرتے رہیں ہر وقت، ہمیں مکھن لگاتے رہیں ہر وقت، تم تو بہت اچھی ہو، اور وہی سارا کا سارا گناہ کرتا ہے، وہی ظالم ہے، وہی برا ہے، تم تو بہت اچھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے ہم بیان سن بھی لیں گے نا، اگر یہ والا ہم نے تو فارورڈ کر دیا آپ کو، اگر بیان آپ نے سن لیا، ہونا کچھ نہیں ہے اس کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جن گناہوں کی بات کریں آپ تو ان گناہوں میں مطلع ہی نہیں ہوتی، آپ نے تو کبھی ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ بھائی دید قصور کو حاصل کریں، ہم میں کیا غلط کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، تب کہیں جا کر کے بندہ توبہ کرتا ہے، ورنہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی جب تک اس کو اس بات کا یہ احساس نہ ہو کہ وہ کیا گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نا اپنے سیلف ڈیفائنڈ قسم کی جو نیکیاں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان نیکیوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس سیلف ڈیفائنڈ قسم کی نیکیاں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس ان نیکیوں کے کیموفلاج کے اندر، یہ نیکیاں ہمارے گناہوں کو کیموفلاج کر دیتی ہیں، چھپا دیتی ہیں ہمارے گناہوں کو، ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیتی ہیں، اس وجہ سے ہمارا بالکل دھیان اپنے گناہوں کی طرف نہیں جا رہا ہوتا، اور ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم صرف دوسروں کو قصوروار سمجھ رہے ہوتے ہیں، سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بالکل ذمہ داری سے نا آزاد سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوشش کر کے، اگر آج تو بہت مشکل لگ رہا ہے لیکن بہرحال اگر کچھ لکھ کر کے وہ بیان آپ کے پاس بھیج سکے تو امید ہے کہ کسی کو کچھ فائدہ ہو. اس سے کیا پیرنٹس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے؟ مطلب ہمارے ہی گناہ کی وجہ سے ہی ہمارا سپورٹ نہیں کرتے. نہیں ابھی تو میں خیر شوہر کی بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پیرنٹس تو ایک الگ چیز ہوتے ہیں نا، شوہر ایک الگ چیز ہوتی ہے، بہت بہت بڑا فرق ہوتا ہے پیرنٹس میں اور شوہر میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ صرف شوہر کی بات ہو رہی تھی، تو پیرنٹس کا معاملہ ڈفرینٹ ہے، اب وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. تو ابھی اگلا میسج پڑھ لوں پہلے. مینی تھنگز وائفز ڈو جسٹ ٹو میک ہسبینڈ ہیپی بٹ ایٹ دی اینڈ ہسبینڈ بیکمز انہیپی. تو وہ مینی تھنگز وائف ڈو جسٹ ٹو میک ہسبینڈ ہیپی، تو مطلب آپ کی نیت سے تو خالی کچھ نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے؟ آپ نیت کر لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر، یہ جو جتنے عیسائی ہیں، جتنے یہودی ہیں، جتنے جو ہیں وہ پریکٹسنگ ہندوز ہیں، پریکٹسنگ عیسائی، یہودی، پریکٹسنگ ہندوز، ٹھیک ہے نا، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، پریکٹسنگ، ٹھیک ہے نا، یہ سب اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کی نیت ہوتی ہے اللہ کو خوش کرنے کی، لیکن کیا یہ اللہ کو خوش کرتے ہیں اپنی عبادتوں سے؟ अपने जो चढ़ावे चढ़ाते हैं, इबादतें करते हैं और न जाने क्या क्या काम करते हैं ये अल्लाह को खुश करने के लिए, क्या अल्लाह ताला खुश हो जाता है इनके कामों से? नहीं, अल्लाह ताला खुश नहीं होता। क्यों? नीयत तो थी इनकी, बहुत सारे काम इन्होंने किए अल्लाह को खुश करने के लिए, लेकिन अल्लाह तो खुश नहीं हुआ ना इनसे। क्यों नहीं खुश हुआ भाई, आप बताएं जरा मुझे, क्यों नहीं खुश हुआ अल्लाह ताला? इनकी नीयत बहुत अच्छी थी, अमल भी इन्होंने बहुत ज्यादा किए, लेकिन अल्लाह फिर भी खुश नहीं हुआ। क्यों खुश नहीं हुआ जरा बताएं ना। आपको बात समझ में आनी है कि नहीं आनी? बात समझनी है कि नहीं समझनी? जो आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। चलिए, किसी और ने जवाब दिया तरीका गलत है। अच्छा, तो सही तरीका क्या होता है? नियत नहीं थी। आपकी बात नहीं समझनी। कान बंद किए हुए इस वक्त, माइंड बंद किया हुआ है जी। सुन्नत तरीका। अच्छा, सुन्नत तरीका क्या होता है ये बताएं जरा। अमल ठीक नहीं था, सुन्नत तरीका नहीं था, तो अब ये, अब अगला सवाल ना, अब सवाल चेंज हो गया। सुन्नत तरीका क्या होता है? व्हाट इज सुन्नत तरीका? पूछ कर चलना। किससे पूछ कर चलना? ऐसे ही पूछ कर चलना। सुन्नत तरीका क्या होता है भाई? सुन्नत तरीके की सादी सी तारीफ ये है, जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। एग्जैक्टली व्हाट नबी टोल्ड अस, राइट? ये सुन्नत तरीका होता है, ठीक है? तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट नबी टोल्ड यू, हाउ वुड यू नो कि व्हाट नबी टोल्ड अस, ठीक है ना? यू हैव टू गो एंड एस्क, यू हैव टू गो एंड लर्न द तरीका ना, ठीक है ना? तब आपको पता लगेगा कि सुन्नत तरीका क्या होता है। फिर उस सुन्नत तरीके के मुताबिक जब आप अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करेंगी, तब अल्लाह ताला राजी हो जाएगा, ठीक है ना? क्या मतलब? तरीका सीखना पड़ता है। मतलब इसका क्या है? तरीका सीखना पड़ता है। सीखने के लिए आपको किताब भी पढ़नी पड़ती है, टीचर से भी पूछना पड़ता है। सीखे बगैर आपको तरीका नहीं आता, आप गलत तरीके के मुताबिक प्लीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नियत आपकी होती है प्लीज करना, तरीका आपको आता नहीं है, और तरीका आपने कभी सीखने की कोशिश नहीं करी, या जिनसे सीखना चाहिए था उनसे आपने नहीं सीखा, बल्कि किसी जाहिल से जाकर के सीख लिया कि भाई मुझे बताओ क्या तरीका होता है अल्लाह को राजी करने का, राइट? उस जाहिल को खुद नहीं पता था, उसने आपको गलत तरीके बता दिए, तो आपने उन गलत तरीकों के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया ना, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला तो राजी नहीं हुआ, आपकी नीयत भी थी, आपका अमल भी था, फिर भी अल्लाह ताला राजी नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि आपने सही सोर्सेस से जा करके तरीका नहीं सीखा। दिस बिकेम द रीजन, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से हस्बैंड का भी मामला है। हस्बैंड खुदा होता नहीं है, मजाजी होता है, हालांकि वो भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, हदीस मुबारक है, अगर मैं औरत को किसी को सजदा करने के लिए कहता तो मैं उससे कहता अपने शौहर को सजदा करे। आपको कोई तकलीफ है नबी अलैहिस्सलाम के इस कॉल के ऊपर? आप सल्लम जो है वो नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला ज्यादती कर रहे थे इस तरह से, औरतों के हकूक को पामाल कर रहे थे इस तरीके से, अगर वो इस तरह की बात कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम है? यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे क्यों कहा? उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। औरतों की इज्जत खराब करी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नाउज़ बिल्ला। देयर वाज अ रीजन व्हाई नबी अलैहिस्सलाम सेड इट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिशात से काम नहीं करते थे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करते थे। ये अल्लाह ताला का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि नबी अलैहिस्सलाम सल्लम ने ऐसी बात फरमाई है, सही है? एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, आमाल दूर की बात है, अपने ईमान की पहले तजदीद करें, पहले ये देखें कि आपका ईमान भी है बाकी के नहीं है, ठीक है ना? तो ठीक है, तो ये बात जो आपने कह दी थी ना कि मैं अल्लाह के बारे में बात कर रही हूँ, मैं हस्बैंड के बारे में बात नहीं कर रही, ठीक है? तो हस्बैंड को ना अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया है, पहली बात अल्लाह वाला मुकाम किसी के पास नहीं है। हस्बैंड तो क्या, अल्लाह का मुकाम तो नबी के पास नहीं होता, ठीक है ना? अल्लाह और नबी के अंदर इतना फर्क है तो अल्लाह और हस्बैंड में कितना फर्क होगा? लेकिन जो उसूल की बात होती है ना, वो समझाने की बात हो रही है, ठीक है ना? تو اس ایگزامپل کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایگزامپل سے اپنے ہسبینڈ کی ایگزامپل کو بھی سمجھیں, بیکاز دس از دا سیم پروسیس, ناٹ دا سیم پرسن, ناٹ دا سیم ذات, بٹ دا سیم پروسیس. ٹھیک ہے نا, کہ کسی کو آپ نے راضی کرنا ہو, کسی کو آپ کو خوش کرنا ہو, تو صرف آپ کی نیت اور آپ کی محنت کافی نہیں ہوتی ہے. صرف آپ کی نیت اور آپ کی محنت کافی نہیں ہوتی ہے, بلکہ آپ کا طریقہ بھی میٹر کرتا ہے, آپ کا طریقہ بھی میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب چلیں ہسبینڈ کو چھوڑ دیں, اپنی بات کریں, آپ کو راضی کرنا ہو, ٹھیک ہے نا, آپ کی جو کوئی بھی آپ کے خاندان کا کوئی فرد ہو وہ آپ کو راضی کرنا چاہے اور اس کی نیت ہو کہ وہ آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور وہ بہت سارے کام بھی کرے جو آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے, ہسبینڈ, چلیں ہسبینڈ کی بات کرتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ آپ کو راضی کرنا چاہیں, ان کی نیت ہو کہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, وہ بہت سارے آپ کو گفٹ بھی لا کر کے دے دیں آپ کو راضی کرنے کے لیے, لیکن جو طریقہ تھا آپ کو راضی کرنے کا وہ طریقہ وہ فلفل نہ کریں تو کیا آپ راضی ہو جائیں گے ان سے؟ وہ جو آپ کے لیے ایک ٹیزنگ کا ایک ماحول بناوے گھر کے اندر سے, گھر کے اندر جو ماحول بناوے جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے, آپ کے ہسبینڈ صاحب جو ہے نا وہ اس کو فکس کرنے میں وہ کوئی دلچسپی نہ رکھیں, بلکہ اس کے بجائے وہ کہیں میں تو تمہیں بہت خوش کرنا چاہتا ہوں, دیکھو میں تمہارے لیے ابھی نیکلس لے کر کے آیا ہوں, دیکھو میں ابھی تمہارے لیے رنگ لے کر کے آیا ہوں, ہے نا, لیکن گھر کے اندر جو آپ کو تکلیف اذیت پہنچانے والا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اس کے بارے میں وہ کہیں کہ نہیں نہیں یہ تو تم نے خام خواہ کا جو ہے نا وہ ایک اپنے دماغ میں جو ہے نا تمہارے ایک تم نے امیجن کیا ہوا ہے سارا معاملہ. ٹھیک ہے, تو کیا آپ ان سے راضی ہو جائیں گی؟ نہیں راضی ہوں گی نا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو طریقہ آپ کو راضی کرنے کا تھا اس پرابلم کو سالو کرنے کا وہ تو آپ کے ہسبینڈ کرنے ہی نہیں چاہ رہے, آپ راضی نہیں ہوں گی. بالکل یہی معاملہ ہسبینڈ کا بھی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو طریقہ سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, یو ہیو ٹو گو ٹو دا رائٹ سورسز اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ از دا کریکٹ وے آف پلیزنگ دا ہسبینڈ. ٹھیک ہے نا, وہ طریقہ جب تک آپ نہیں سیکھیں گے نا اس وقت تک آپ کے اتنی محنتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہماری جو گھروں کی عورتیں ہیں نا وہ بہت بڑے بڑے پرابلمز ہیں. میری وائف مجھے بتاتی ہیں, الحمدللہ ہم ایک ایک چیز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بیویوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے نا پتا چلتا ہے فنڈامنٹلز نہیں معلوم, عورتوں کو فنڈامنٹلز بیسکس نہیں معلوم ہوتی کہ کیا کرنا چاہیے, ایسے ایسے بلنڈرز کر رہی ہوتی ہیں, ایسے ایسے بے وقوفی کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اٹ کین ایزلی بی رائٹ کریکٹڈ, لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا اور معلوم کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہوتی. پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ ویسٹ کرنے کے بعد پھر کہیں جا کر کے ادھر ادھر سے سن سنا کر کے بہت زیادہ, تب کہیں جا کر کے ہو جائے جب پوچھتی ہیں تب ان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی کرنا تھا, اوہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے, اوہ یہ نہیں کرنا ہوتا, اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ سیکھنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا, تو اس کو بس آپ اڈاپٹ کرنا شروع کریں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنا کر سکتی ہیں سیکھنے کے معاملے میں اتنا کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے. ٹھیک ہے, بہت سارے مسئلے تو ایسے ہی حل ہو جائیں گے, اور پھر جو کچھ رہ جائیں گے نا, اگر مسئلے کچھ رہ بھی گئے نا تو وہ پھر جو رہے ہوئے مسئلے ہوتے ہیں نا پھر وہ ایسے مسئلے ہوں گے کہ جو کہ آپ کو پھر جنت کے اندر اونچے اونچے مقام دلوانے کا سبب بنیں گے اگر کچھ مسئلے رہ بھی گئے تو. ٹھیک ہے, چلو ویسے بھی آپ کے ٹائم ختم ہو چکا ہے تفسیر کلاس کا, تو فقہ کی کلاس, فقہ کی جو آپ کی ٹیچر ہیں وہ آپ موجود ہیں ربینہ صاحب؟
جی السلام علیکم حضرت.
وعلیکم السلام, جی آپ ریکارڈ کر لیں.
جی جزاک اللہ.